एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दिल को छू लेने के साथ साथ शायद थोड़ा झकझोर भी देती है।
हाँ बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं ब्रीना क्लार्क के पहले उपन्यास रिवर क्रॉस माय हार्ट की। 1999 में जब ये प्रकाशित हुई तो इसने काफी ध्यान खींचा, खासकर जब ओपरा विन्फ्रे ने इसे अपने बुक क्लब के लिए चुना।
और चुना भी क्यों न जाए, ब्रीना क्लार्क की आवाज मतलब समकालीन अफ्रीकन अमेरिकन साहित्य में बहुत अहमियत रखती है।
सही।
वो खुद वॉशिंगटन डीसी में पली बढ़ी और उनका शहर, खासकर वो जॉर्जटाउन का इलाका है ना,
हाँ,
वो इस कहानी की रग रग में बसावा महसूस होता है।
बिल्कुल।
उनका लेखन हमें सीधा 20वीं सदी की शुरुआत के अश्वेत समुदायों की जिंदगी में ले जाता है, उनकी रोजमर्रा की खुशियाँ, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदें।
हाँ, और खासकर महिलाओं और परिवारों के नजरिए से, है ना?
बिल्कुल, जैसे वो इतिहास के वो पन्ने खोल रही हों जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।
इसीलिए शायद उन्हें एक तरह का सांस्कृतिक इतिहासकार कहना गलत नहीं होगा।
सही कहा।
और रिवर क्रॉस माय हार्ट इसी नजरिए का एक बेहतरीन नमूना है। ये ऐतिहासिक उपन्यास भी है और एक लड़की के बड़े होने की कहानी भी।
हाँ, वो जिसे साहित्य में बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं।
बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है 1925 के जॉर्जटाउन डीसी में।
सोचिए वो वक्त।
हाँ, एक ऐसा वक्त और जगह जहाँ एक तरफ अश्वेत समुदाय की अपनी एक धड़कती हुई जिंदगी है,
तो बिल्कुल
अपनी संस्कृति है, वहीं दूसरी तरफ नस्लीय भेदभाव की वो गहरी खाई भी मौजूद है।
हाँ, ये तनाव कहानी में महसूस होता है।
और क्लार्क इस उपन्यास से मतलब टोनी मॉरिसन और ग्लोरिया नायलर जैसे बड़े लेखकों की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं,
जो अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और अनुभवों को कहानी में पिरोते आए हैं।
बिल्कुल। और इस किताब का दिल है एक परिवार की कहानी, बायनम परिवार।
बायनम परिवार
और एक हादसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है।
तो आज हम इसी हादसे पर, इसके किरदारों पर क्या असर पड़ा और इससे जो सवाल उठते हैं उन पर गौर करेंगे।
हाँ, देखेंगे कि दुख, अपराध बोध और वो जो खामोशी होती है ना,
हाँ,
वो कैसे एक परिवार के ताने बाने को बदल देती है।
और साथ ही उस दौर के जॉर्जटाउन समुदाय की क्या भूमिका थी उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर।
तो कहानी हमें ले चलती है 1925 की तपती गर्मी में जॉर्जटाउन। हमारी मुलाकात होती है बायनम परिवार से। विली हैं, एलिस हैं और उनकी दो बेटियां।
12 साल की जॉनी में और 6 साल की नन्नी क्लारा। उनकी जिंदगी मतलब उस दौर के हजारों अफ्रीकन अमेरिकन परिवारों जैसी ही है।
अच्छा।
विली दिन भर मेहनत करते हैं, एलिस घर संभालती हैं। जिंदगी आसान नहीं है, जाहिर है।
हाँ, नस्लीय भेदभाव, सीमित मौके, ये सब तो था ही।
बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक बेहतर कल का सपना है। और उनके घर के पास ही बहती है पोटोमैक नदी।
पोटोमैक नदी
गर्मी में ठंडक का एहसास भी है, लेकिन उसकी लहरों में एक अनदेखा खतरा भी छिपा है।
विली का वो पसीना बहाना और एलिस का घर संभालना, ये उस वक्त के परिवारों के संघर्ष और उनकी उम्मीदों को दिखाता है ना?
हाँ बिल्कुल। कहानी बड़ी खूबसूरती से एक आम दिन का माहौल बनाती है। एक पारिवारिक पिकनिक की तैयारी चल रही है,
रोजमर्रा की जद्दोजहद से थोड़ी राहत।
हाँ, नदी किनारे कुछ सुकून के पल बिताने का अरमान।
लेकिन यहीं पर कुछ होता है।
हाँ, यहीं किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिकनिक वाले दिन जब सब तैयार हो रहे होते हैं, बड़ी बहन जॉनी में, माँ एलिस ने मना किया था, सख्त हिदायत दी थी
नदी पर जाने से।
हाँ, लेकिन जॉनी में उस हिदायत को नजरअंदाज कर देती है और छोटी क्लारा को चुपके से पोटोमैक नदी के किनारे ले जाती है। कुछ देर की हंसी ठिठोली, पानी में खेलना, बच्चों की मासूमियत।
हाँ।
और फिर वो भयानक पल आता है। नदी की तेज धाराएं नन्नी क्लारा को खींच लेती हैं।
नहीं,
जॉनी में देखती रह जाती है, बेबस, कुछ कर नहीं पाती। क्लारा डूब जाती है।
उफ। और यही क्लार्क की लेखनी का, हाँ, मतलब जो कमाल है वो सामने आता है।
ऐसे
ना?
बिल्कुल।
वो हादसे के खौफनाक ब्योरे में नहीं उलझती।
नहीं,
उनका ध्यान इस बात पर है कि इस एक पल ने सब कुछ कैसे बदल दिया। वो घर लौटने का सफर, जॉनी में का अकेलापन, उसका अंदर का डर।
हाँ, और क्लार्क यहाँ नाटकीय विडंबना का इस्तेमाल करती हैं, मतलब ड्रामेटिक आयरनी जिसे कहते हैं।
हाँ, यानी हमें पढ़ने वालों को अंदाजा होने लगता है कि कुछ बुरा हुआ है,
जबकि कहानी के पात्र, खासकर माँ बाप, अभी सच्चाई से अनजान हैं।
ये घटना जैसे कहानी की आत्मा बन जाती है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है।
बिल्कुल। और जब जॉनी में अकेले सहमी हुई घर लौटती है तो वो सदमे में है,
बोल नहीं पाती होगी,
बता ही नहीं पाती कि असल में क्या हुआ था। वो सच कि वो माँ की मर्जी के खिलाफ क्लारा को नदी पर ले गई थी, ये बात वो कह नहीं पाती।
और माँ बाप एलिस और विली,
वो अपनी बच्ची के खोने के गम में जैसे टूट जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या हुआ।
शायद वो अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा सवाल नहीं करते, है ना? शायद करना भी नहीं चाहते उस वक्त।
हाँ शायद वो मान लेते हैं कि ये बस एक दर्दनाक हादसा था।
और यहीं से जॉनी मे के अंदर वो अपराध बोध का भारी बोझ और एक खामोशी की दीवार खड़ी हो जाती है। ये अनकहा सच, ये चुप्पी, ये ना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाती है बल्कि परिवार के अंदर एक अनदेखा तनाव भी बुनने लगती है।
सोचिए जरा, एक 12 साल की बच्ची, उसके मन पर इस राज का कितना वजन होगा।
ये चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है ना, ये रिश्तों के बीच एक खालीपन पैदा कर देती है, बहुत भारी हो जाती है।
बिल्कुल, और ये देखना बड़ा मार्मिक है कि परिवार का हर सदस्य इस पहाड़ जैसे दुख से कैसे जूझता है। सबका अपना तरीका है, अपनी लड़ाई है।
चलो किरदारों की बात करते हैं। एलिस बैनम, माँ, हादसे से पहले वो कैसी थी?
हादसे से पहले वो घर की जान थी, ममता की मूरत, परिवार की धुरी। लेकिन क्लारा की मौत वो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है
कि शायद मैं रोक सकती थी।
हाँ, वो उन आखिरी पलों को बार बार सोचती है, शायद कुछ अलग कर सकती थी। वो कहावत है ना, एक माँ की आंखें हर जगह होनी चाहिए।
ये एहसास उसे कचोड़ता रहता होगा
बहुत ज्यादा। वो जैसे अपनी दुनिया में सिमट जाती है, अवसाद उसे घेर लेता है। ईश्वर पर उसका भरोसा और मजबूत तो होता है, पर अब वो आस्था नर्म मरहम कम, एक सख्त कवच ज्यादा लगती है, जिसमें गुस्सा भी है, शायद खुद को सजा देने का भाव भी है।
और इसका असर जॉनी मे पर?
वो अपनी जिंदा बेटी जॉनी मे से भी जैसे दूर हो जाती है, भावनात्मक रूप से कट जाती है। उसका संघर्ष सिर्फ दुख से नहीं, ईश्वर से भी है, इस सवाल से कि ऐसा क्यों हुआ।
उसकी वापसी, मतलब अपनी बेटी को फिर से गले लगा पाने तक का सफर कैसा है?
बहुत धीमा, बहुत तकलीफ दे।
ये जो उसकी धार्मिकता बढ़ जाती है, क्या वो सच में उसे सहारा दे रही थी या वो खुद को और परिवार को सजा देने का एक तरीका बन गया था? ये एक जटिल सवाल है ना?
हाँ, ये बहुत जटिल है। क्लारा इसे बड़ी संवेदनशीलता से दिखाती हैं।
अब बात करते हैं विली बायनम की, पिता की। हादसे से पहले वो कैसे थे?
विली, हादसे से पहले वो एक मेहनती आदमी थे, परिवार का पेट पालने वाले, अपनी भावनाएं शायद ही जाहिर करते थे।
उस दौर के बहुत से अश्वेत पुरुषों की तरह, जिनकी ख्वाहिशें अक्सर हालात की सीमाओं से टकराती थी।
बिल्कुल, क्लारा की मौत के बाद विली कोशिश करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा चलता रहे, कम से कम बाहर से नॉर्मैलिटी बनाए रखने की कोशिश।
लेकिन अंदर से?
अंदर से उनका दुख भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, कभी शराब में, कभी काम में ज्यादा डूब जाने में, कभी एक अजीब सी खामोशी में।
वो एलिस की तरह खुलकर रोते या चिल्लाते नहीं?
नहीं, उनका तरीका अलग है, पर दर्द कम नहीं है। उनकी चुनौती है घर चलाने की जिम्मेदारी और एक पिता के तौर पर भावनात्मक रूप से मौजूद रहने के बीच संतुलन बनाना। उनका वो खामोश मजबूत सहारा ही बाद में परिवार को दोबारा जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है।
और फिर है कहानी की धुरी, जॉनी मे।
हाँ, जॉनी मे
हादसे से पहले एक आम बड़ी बहन, थोड़ी जिम्मेदार, थोड़ी शरारती, अपनी छोटी बहन से प्यार करने वाली।
हाँ, लेकिन क्लारा की मौत और उसके राज का बोझ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।
उसका बचपन जैसे एक झटके में खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, क्लार्क यहाँ वो जो थर्ड पर्सन लिमिटेड ओमनिसिएंट नजरिया है उसका इस्तेमाल करती हैं।
हाँ, यानी हम कहानी ज्यादातर जॉनी मे की नजरों से देखते हैं, उसकी सोच, उसके एहसास महसूस करते हैं।
सही, जिससे हम उसके अंदर के तूफान को, उसके अपराध बोध को समझ पाते हैं।
वो कैसे हो जाती है हादसे के बाद?
कहने लगती है, नदी की याद, क्लारा का चेहरा, ये सब उसे सोने नहीं देता।
उसका स्कूल जाना, दोस्त बनाना, ये सब मुश्किल हो जाता होगा।
हाँ, सब कुछ इस अपराध बोध के साए में होता है। वो जैसे प्रायश्चित करने के लिए पढ़ाई में जी जान लगा देती है शायद। जैसा आपने कहा, दो लोगों के हिस्से की अच्छी लड़की बनने की कोशिश में।
उसकी किशोरावस्था वो असल में मासूमियत खोने और वक्त से पहले बड़े हो जाने की कहानी है।
हाँ, वो कहावत है ना, बच्चे चीजें जानते हैं। वो घर की बदली हुई हवा को महसूस करती है, भले ही कोई कुछ ना कहे।
उसकी असली लड़ाई खुद को माफ करने की है और सच बोलने की हिम्मत जुटाने की।
बिल्कुल, ये एक बहुत धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है उसके लिए।
और हमें क्लारा को भी याद रखना होगा।
हाँ, क्लारा।
कहानी में इसकी मौजूदगी भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी याद पूरी कहानी को चलाती है।
वो खोई हुई मासूमियत का, अधूरे रह गए सपनों का प्रतीक बन जाती है।
है पूरा समुदाय जॉर्जटाउन का। वो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय।
हाँ, वो सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि खुद एक किरदार की तरह है।
इसका दोहरा चेहरा है ना?
है ना, बिल्कुल।
एक तरफ दुख में सहारा देने वाला, रिवाजों से, खाने पीने से, दुआओं से,
और दूसरी तरफ
नजरें गड़ाए रखने वाला, कानापूसी करने वाला भी,
जज करने वाला।
ये दिखाते हैं कि किसी का दर्द कभी सिर्फ उसका अपना नहीं होता, समाज उसमें शामिल होता है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से।
हाँ, समुदाय सहारा देता है, लेकिन कभी कभी वही सहारा बोझ जैसा भी लग सकता है।
बिल्कुल,
खासकर जब आप पर सबकी नजरें हों और आप अंदर से टूट रहे हों।
तो हादसे के बाद बैलम का घर कैसा हो जाता है?
दुख की चादर ओढ़े रहता है।
एलिस का वो जाहिर होता दुख, विली के अंदरूनी खामोशी, और इन दोनों के बीच जॉनी में का अकेलापन।
वो बड़ी हो रही है, स्कूल जा रही है, लेकिन उसका बचपन कहीं खो गया है।
हाँ, वो दोस्तों से कटने लगती है, किताबों में सुकून ढूंढती है। कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो शायद उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाते हैं।
हाँ, आते हैं। जॉनी में की कुछ वक्त के लिए दोस्तियां बनती हैं, उसकी जिंदगी में पहला रोमांटिक एहसास आता है
जो उसे अपनी उन नाकाबिलियत की भावनाओं से लड़ने पर मजबूर करता होगा।
बिल्कुल, और एक बहुत ही अहम पल तब आता है जब चर्च उसे पोटोमैक नदी में बपतिस्मा देने का फैसला करता है।
उसी नदी में?
हाँ, वही नदी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी।
ये तो बहुत खौफनाक रहा होगा उसके लिए।
खौफनाक है, अपने डर का सीधा सामना, लेकिन उस डर को झेल जाना और उस वक्त दूसरों का सहारा महसूस करना, ये उसे थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करता है।
जैसे एक इशारा के अतीत आपको पूरी तरह तबाह कर दे, ये जरूरी नहीं है।
हाँ, शायद एक नए जन्म की तरह, भले ही वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो।
ये सब हमें उपन्यास के गहरे संदेशों और विषयों की तरफ ले जाता है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी मासूमियत कितनी नाजुक होती है।
हाँ, कैसे एक पल में सब बिखर सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही नस्लवाद जैसे बाहरी खतरों से जूझ रहे हों।
एलिस का वो अपराध बोध जैसे इस भ्रम को तोड़ता है कि हम सब कुछ काबू में रख सकते हैं।
और इसी से जुड़ा है माँ होने की जिम्मेदारी और अपराध बोध का सवाल। एलिस का दर्द क्या सिर्फ उसका अपना था, या उस दौर के समाज ने माओं पर जो उम्मीदों का पहाड़ लाद रखा था, ये उसका नतीजा था?
उपन्यास दिखाता है कि ये अपराध बोध कितना जहरीला, कितना विनाशकारी हो सकता है।
फिर वो दुख, अपराध बोध और खामोशी, ये तीनों जैसे कहानी के धागे हैं।
हम देखते हैं कि दुख जताने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन जॉनी मे के लिए अपराध बोध और राज का वो मेल, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है।
ये जो राज वो सीने में दबाए रखती है, ये शायद हादसे से भी ज्यादा चोट पहुंचाता है ना?
हाँ, बिल्कुल। ये कहानी कहीं ना कहीं खुद को माफ करने की जरूरत पर जोर देती है। जैसे एक किरदार कहता भी है, दुख कोई सीधी रेखा नहीं है,
या गोल गोल घूमने जैसा है, बार बार उसी दर्दनाक जगह पर वापस आना।
सही। समुदाय का वो दोहरापन भी बहुत अहमियत रखता है, वो पनाह भी देता है और पिंजरा भी बन सकता है।
कैसे एक हादसा आपको अपने सबसे करीबी लोगों के बीच भी अकेला महसूस करा सकता है।
और क्लार्क ये भी दिखाती है कि कैसे समाज की बड़ी दिक्कतें जैसे नस्ल भेद और गरीबी किसी के निजी दुख को और गहरा कर सकती हैं, उससे उभरने के रास्ते मुश्किल बना सकती हैं।
और जॉनी मे के जरिए हम बचपन के उस लचीलेपन और वक्त से पहले बड़े हो जाने की कहानी देखते हैं।
हाँ, वो हालात के हिसाब से ढलती तो है, पर कीमत चुकाती है अपनी मासूमियत की। वयस्क बोझ उठाना पड़ता है उसे।
आस्था और शक का ताना बाना भी बहुत दिलचस्प है।
हाँ, एलिस का वो मजबूत, लगभग हटी विश्वास, और जॉनी मे के मन में उठते सवाल। हादसा लोगों को ईश्वर के करीब भी ला सकता है और दूर भी कर सकता है।
और इन सब के बीच बहती है पोटोमैक नदी।
हाँ, पोटोमैक नदी, वो सिर्फ एक नदी नहीं, एक ताकतवर प्रतीक है। जीवन और मृत्यु, सुंदरता और खतरा, उदासीनता, सब कुछ उसमें समाया है।
उफ, वो हादसे की जगह है।
लेकिन शायद कहीं ना कहीं नए सिरे से शुरुआत की उम्मीद भी उसी से जुड़ी है। जैसा कहा गया है, नदी एक मोहक थी, वो खींचती भी है और डराती भी।
जिस तरह से क्लार्क ये कहानी कहती है, वो भी बहुत मायने रखता है ना, उनकी शैली, उनका लिखने का अंदाज कैसा है।
क्लार्क की भाषा बहुत काव्यात्मक है, पढ़ने वाले को बांध लेती है। वो बहुत बारीकी से माहौल बनाती है, जैसे हम खुद 1920 के दशक के जॉर्ज टाउन में पहुंच गए हों।
वहां की धूल, गर्मी, आवाजें, सब महसूस होता है।
हाँ, और वो उस दौर की अफ्रीकी अमेरिकी बोली को बड़ी सच्चाई से पकड़ती हैं, जिससे कहानी और असली लगती है। जॉर्ज टाउन शहर खुद एक किरदार की तरह उभरता है।
उनकी एक पंक्ति याद आती है, उनके घर की खामोशी में सबसे तेज आवाज एक छप की याद थी।
उफ, क्या बात है। ये दिखाता है कि वो खामोशी में भी कितना कुछ कह जाती हैं।
और वो जो नजरिया है ज्यादातर जॉनी मे का, उसका क्या असर होता है?
हाँ, वो जो तीसरे व्यक्ति सीमित सर्वज्ञ दृष्टिकोण है, जहाँ हम मुख्य रूप से जॉनी मे के मन की दुनिया में रहते हैं, वो हमें उसके अपराध बोध, उसके डर, उसकी उलझन का हिस्सेदार बना देता है। हम कहानी को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं।
क्लार्क भावनाओं का विस्फोट दिखाने की बजाय अंदर चल रही खामोश लड़ाइयों पर ध्यान देती हैं।
बिल्कुल, और इसी संयम में उनकी ताकत है। वो यादों और फ्लैशबैक का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये दिखाने के लिए कि कैसे कोई बड़ा सदमा वक्त के सीधे चलने के एहसास को तोड़ देता है।
तो ये कहानी हमें दुख के बहुत निजी और पेचीदा रास्तों के बारे में सिखाती है। ये दिखाती है कि अनकही बातें, छिपे हुए राज कितने गहरे जख्म दे सकते हैं।
हाँ, लेकिन साथ ही ये इंसान की हिम्मत, उसके लचीलेपन की भी कहानी है। ये बताती है कि माफी का रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं।
कहानी एक उम्मीद छोड़ जाती है, शायद मुक्ति की, समुदाय की ताकत की
और प्यार की, जो कभी कभी खामोशी में भी जिंदा रहता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।